सुने हुए में यदि विकल्प न हो तो विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है तो फिर उससे हमारे जीवन का या हमारा नित्य संबंध हो जाता है। किंतु उस विश्वास का उपयोग केवल उसके प्रेम की प्राप्ति में होना चाहिए, कामना पूर्ति में नहीं। क्यों? कामना तो उन लोगों की पूरी होती है जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी पूरी होती है। और सभी कामनाएं आज विश्व के इतिहास में किसी की पूरी कभी नहीं हुई। मैं तो कभी कभी विनोदी भाषा में कहता हूं कि ब्रह्म जिनका बालक बनकर गोद में खेला उनकी भी सभी कामनाएं पूरी नहीं हुई। और कुछ कामनाएं सभी की सदैव पूरी होती रहती हैं, कुछ कामनाएं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस कामना को हम विचार से नहीं मिटा सकते उसको पूरा करके उसके ऊपर उठ जाना चाहिए, और जिन कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते उनको विचार से मिटा देना चाहिए। तात्पर्य यह निकला कि सभी को यानी मनुष्य मात्र को कामना रहित होना अनिवार्य है और हो सकता है। क्यों? यदि सभी कामनाएं पूरी होती तब तो ये कह सकते हैं भाई कामना निवृत्ति कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती और कामना की आपूर्ति में सभी को शुभ होता है, दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। दुख शुभ किसी की मांग नहीं है, सबकी मांग है शांति मिले, मुक्ति मिले, भक्ति मिले, रसरूप जीवन मिले, स्वाधीन जीवन मिले, ये सबकी मांग है। इस मांग की यदि विस्मृति न हो, हमें अपने द्वारा इस मांग के अनुभव करने का अवसर मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, भाई हमें तो अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय जीवन चाहिए, यदि ये मांग हमारी आपकी सबसे अपनी मांग हो जाए तो मांग की जागृति से, मांग के सबल होने से, मांग के स्थायी होने से अपने आप काम नाश हो जाता है। काम नाश होने का अर्थ क्या है? ये दृष्टि का जो आकर्षण है वो नहीं रहता। काम का अर्थ ही है जो सदैव न हो उसका जो आकर्षण है, उसका जो खिंचाव है, उसको काम कहते हैं। तो जब जीवन में अविनाशी अनंत नित्य सौंदर्य की मांग गिर जाती है तो विनाशी परिवर्तनशील का जो आकर्षण था वो नाश हो जाता है। बस इतना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। जहां विनाशी परिवर्तनशील का आकर्षण समाप्त हुआ, बस अपने आप इंद्रियां विषय विमुख हो जाती हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है। अब रही कर्तव्य कर्म की बात, वो स्वतः होने लगता है। और जैसे एक साधारण आदमी खूब श्रमित होकर थककर सो जाता है, वैसे ही सजग मानव हर काम के अंत में जागृत सुसुप्ति को प्राप्त कर लेता है। उसे जागृत सुसुप्ति प्राप्त होती है। ये जागृत सुसुप्ति जो है यही एक प्रकार से योग है। किसी को समाधि कहते हैं, किसी को योग कहते हैं। जागृत सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति में ये जो मनुष्य की जो अहंता है या उनका कार्य जो वृत्तियां हैं वे सब चेतना से विलीन होती है। चेतना में जड़ता विलीन नहीं होती। जल सुसुप्ति में और जागृत सुसुप्ति में इतना ही अंतर है कि जल सुसुप्ति के बाद जागृत अवस्था में अगर कहता है मैं बड़े सुख से सोया, तो ये जो जागृत सुसुप्ति है ये सहज समाधि है, ये मनुष्य मात्र की अपनी संपत्ति है, मनुष्य मात्र की अपनी निधि है। इसके प्राप्त करने से हम सब सदा के लिए पराश्रय से, परिश्रम से जड़ता से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सही काम करो और आराम करो। आराम करने का मतलब कोई श्रम नहीं है, जब करना उसे श्रम लग जाता है ना, वो श्रम कहलाता है। तो यो कह यो बदल दो इस बात को कि सही काम करने से आराम मिलता है, संस्करण निकाल दो। और सही काम का अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा दूसरों के अधिकार सुरक्षित हो जाए, यही सही काम है। क्योंकि मानव संसार के अधिकारों का पुंज है और संसार मानव का कर्म क्षेत्र है, ऐसा आया मानव का संसार का संबंध। तो मनुष्य पर जो संसार के अधिकार हैं, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, संसार के रूप में, उन अधिकारों की पूर्ति हो जाती है सही काम करने से। और उसमें स्वयं अधिकार लालसा नहीं रहती, क्योंकि अधिकार लालसा तभी तक रहती है जब तक मानव किसी पराश्रय के आधार पर, परिश्रम के आधार पर अपने सुख का संपादन करता है, अपने सुख का, तब तक तो अधिकार लालसा रहती है। और जब तक अधिकार लालसा रहती है तब तक राग और क्रोध भी रहता है, क्योंकि अधिकार की अपूर्ति में ही क्रोध आता है, अधिकार की पूर्ति में ही राग उत्पन्न होता है। अब आप विचार करके देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने आपके अधिकार की रक्षा की है उन्हीं उन्हीं का आप में राग है, और जिन पर आपने अधिकार माना है और पूरा नहीं किया उन्हीं पर क्रोध है। अब ये राग और क्रोध जो है ये एक अस्वस्थ अवस्था है, एक रोगावस्था है, क्योंकि राग से भोग की रुचि तो उत्पन्न होती है, सहज योग की प्राप्ति नहीं होती, और क्रोध से तीन प्रकार की विस्मृति हो जाती है। ये बिल्कुल जीवन का विज्ञान है, कर्तव्य की विस्मृति, अपने स्वरूप की विस्मृति और प्रभु की विस्मृति। कर्तव्य की विस्मृति होते ही जीवन में अकर्तव्य आ जाता है और उसके आने से जीवन संसार के लिए अनुपयोगी हो जाता है, ऐसा नियम है। और स्वरूप की विस्मृति से देह अभिमान पुष्ट हो जाता है और उसके होने से मनुष्य अपने लिए अनुपयोगी हो जाता है। और भगवत विस्मृति होने से जीवन भगवान के लिए उपयोगी नहीं रहता। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, हम संसार के लिए अनुपयोगी हो जाएं, हम अपने लिए अनुपयोगी हो जाएं, हम प्रभु के लिए अनुपयोगी हो जाएं, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम सभी के लिए उपयोगी हो जाएं। आप इससे आश्चर्य न करें, ये न सोचें हम साधारण प्राणी सभी के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसने सभी के अधिकार की रक्षा की उपयोगी हो गया। अब सभी का अधिकार हम पर क्या है, तो कम से कम ही आपको हमको सबको मान लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य है कि हमारे द्वारा किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई न हो, हम किसी को बुरा न समझें, हम किसी का बुरा न चाहें, इतना अधिकार तो हम पर सारे संसार का है। बुरा न चाहने से, बुरा न समझने से, बुराई न करने से कोई आपकी वस्तु योग्यता सामर्थ्य का व्यय नहीं होगा। ये तो आपकी अपनी चीज है कि आप अपने द्वारा स्वतंत्र हैं इस बात में कि आप किसी का बुरा न चाहें, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप किसी को बुरा न समझें, आप किसी साथ बुराई न करें, इसमें आपको शरीर की अपेक्षा नहीं है, वस्तु योग्यता सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जो जो कार्य शरीर वस्तु योग्यता सामर्थ्य होता है वो सीमित होता है, वो सभी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि सभी में समान वस्तु योग्यता सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम किसी को कभी बुरा नहीं समझेंगे, हमें अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कोई बुरा है या नहीं है, ये निर्णय नहीं कर रहा हूं। भले ही बुरा हो पर हमें क्या अधिकार है किसी को बुरा समझने का, हमें क्या अधिकार है किसी का बुरा चाहने का, हमें क्या अधिकार है किसी साथ बुराई करने का। भले ही कोई हमारे साथ बुराई करे फिर भी हमें बुराई करने का अधिकार नहीं। तो जब मनुष्य इस बात को मान लेता है तो मानो उसने सारे संसार के अधिकारों की रक्षा कर दी। क्योंकि आप संसार में पता लगा के देख लीजिए, खोज कर देख लीजिए, अगर संसार को ये मालूम पड़े कि अमुक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को बुरा नहीं समझता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी बुराई नहीं करता है, उसके सामने आकर लोग अपनी की हुई बुराई बताते हैं, महाराज मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भाई पूछता हूँ किया ये भूतकाल की बात कहते हो अभी की बात कह रहे हो? तो कहता भूतकाल की बात कहता हूँ। तो अभी तो नहीं कर रहे हो ना, तो जब नहीं कर रहे तो अपने को बुरा क्यों मानते हो? और जो दूसरे को बुरा समझता है वो कालांतर में अपने को बुरा समझ लगता है। और महाराज ये रोग इतना बढ़ गया आज मानव समाज में, तो और कोई नहीं मिलता तो मन को ही लोग बुरा समझ लेते हैं, कोई तन को ही बुरा समझ लेते हैं, कोई धन को ही बुरा समझ लेते हैं। अरे बाबा, मन तन धन प्राकृतिक पदार्थ है, तुम्हें कहाँ अधिकार है इनको बुरा समझने का? ये क्या है, ये दूसरे को बुरा समझने का एक परिणाम निकला है, प्रक्रिया हुई है तो लोग बुरा समझ लेते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आप पर या मुझ पर या मनुष्य मात्र पर ये संसार का अधिकार है, अर्थात संसार हमसे आपसे ये आशा रखता है कि हम उसका बुरा न चाहें, हम उसके साथ बुराई ना करें, हम उसे बुरा ना समझें। एक बहन आज कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कुछ को वैराग्य हो जाए, क्या चाहती हूँ, संसार से नफरत हो जाए। मैंने भाई नफरत का नाम तो वैराग्य नहीं होता, किसी को किसी से नफरत हो जाए उसका नाम वैराग्य नहीं है। कोई धन की निंदा कर रहे धन से वैराग्य थोड़ी है, अरे निर्लोभता है धन से वैराग्य। कोई तन की निंदा करे तो तन का वैराग्य तन से वैराग्य थोड़ी है, निर्मोहता तन का वैराग्य है। कोई संसार की निंदा करे वैराग्य थोड़ी है, अरे निष्कामता संसार का वैराग्य है। तो वैराग्य जो है ये कोई रूखा पदार्थ नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि वैराग्य बड़ा रूखा होगा, ऐसा नहीं है। वैराग्य तो स्वाधीनता प्रदान करता है। वैराग्य जब जीवन में आ जाता है तो मनुष्य स्वाधीन हो जाता है, अभय हो जाता है। क्योंकि राज के अतिरिक्त और कोई भय देने वाला नहीं और कोई पराधीन बनाने वाला नहीं, इसलिए वैराग्य से मनुष्य स्वाधीन होता है। और जब मनुष्य स्वाधीन होता है तो आप सच मानिए जो स्वतंत्र है वो उदार भी है और प्रेमी भी। देखिए किसी पर शासक स्वतंत्र नहीं करता और किसी से शासित भी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र पर कोई शासन नहीं कर सकता और स्वतंत्र किसी पर शासन करता ही नहीं। इसलिए महान भाव वैराग्य हमें स्वाधीनता प्रदान करता है और स्वाधीनता से जीवन में उदारता संसार के प्रति और प्रियता परमात्मा के प्रति स्वतः जागृत होती है। ये नियम है। इसीलिए देखिए भक्त लोग कहते हैं कि भगवान परम उदार है। तो भाई परम उदार क्यों है? क्योंकि परम स्वतंत्र है। भगवान परम प्रेमी है। परम प्रेमी क्यों है? क्योंकि परम स्वतंत्र है। तो विधान क्या है कि जो स्वतंत्र होता है वो उदार और प्रेमी भी होता है। स्वतंत्रता में से उदारता और प्रेम को का विभाजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब मनुष्य दूसरों के अधिकार को देकर और अपने अधिकार को छोड़कर स्वतंत्र होता है तब उसमें भी स्वतंत्रता जब उसमें आ जाती है तो उसमें उदारता और प्रेम भी आ जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि आप दूसरों का अधिकार देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और दूसरों पर जो आपका अधिकार है उसको छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं दूसरों का अधिकार तो आप बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे, और छोड़ना चाहते हैं तब भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब तक दूसरों का अधिकार आप देंगे नहीं, अपना छोड़ेंगे नहीं, तब तक भाई स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसी बात को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो क्या कहेंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टि ये कहेंगे भाई जिसने सभी के अधिकार दे दिए वो विद्यमान राज से रहित हो गया। जैसे आप लोग कौन से सवाल क्या करते हैं ना भाई, पूर्ण जन्म के संस्कार, पूर्ण जन्म के संस्कार, भाई संस्कार राज की भूमि में उत्पन्न होता है। संस्कार क्या चीज है? राज ही का नाम संस्कार है। तो जिसने दूसरों के अधिकार की रक्षा कर दी वो पूर्व जन्म जन्मांतर के राज से रहित हो गया, यूं कह दो संस्कारों से मुक्त हो गई है। और जिसने अपना अधिकार छोड़ दिया उस पर फिर नवीन राज उत्पन्न नहीं होता। एक बात तो पुराना नाश हो गया, नया पैदा नहीं हुआ। तीसरी बात वो क्रोध से रहित हो जाता है। तो जब मनुष्य का जीवन राग और क्रोध से रहित हो जाता है तब उसमें योग और स्मृति जागृत होती है। क्योंकि क्रोध न आने से स्मृति का उदय होता है और राग रहित न होने से योग प्राप्त होता है। अगर इसको रूपक बांध के कहा जाए तो राग रहित भूमि में ही योग रूपी वृक्ष लगता है और उस योग रूपी वृक्ष पर ही तत्वज्ञान फल लगता है और तत्वज्ञान रूपी फल में ही प्रेम रूपी रस भरा है, ऐसा विधान की बात है। ये कोई हमने कल्पना करें, हम नहीं माने, आप मानो मत मानो, अगर आप राग रहित हो जाते हैं तो आप योगयुक्त हो जाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध जब राग रहित हो गए तो योगयुक्त भी हो गए, उन्होंने तो परमात्मा का आत्मा का नाम ही लिया। 10 प्रश्न है जिसका बुद्धों ने भगवान बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, और हम हिंदुओं ने तो उनको अवतार मान लिया, और जो हिंदुओं से अतिरिक्त थे वो लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध के जीवन पर किताब लिखी अंग्रेजों ने, लाइट ऑफ एशिया, यानी आज भी दर्शन वाले तो उनको जगत गुरु मानते रहते हैं। तो वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो बुद्ध में क्या विशेषता थी, वो राग रहित हो रहे थे और नहीं, उनको उनके जीवन में किसी प्रकार का राग नहीं था, उनके जीवन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं था, इसलिए वो परम कारुण कहलाते थे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि राग और क्रोध से रहित होने हुए बिना जीवन में पूर्णता आती नहीं, और राग और क्रोध रहित होने के लिए अगर संपत्ति अपेक्षित होती महाराज तो अमेरिका वाले राग और क्रोध से रहित हो जाते, तुम्हारे पास संपत्ति बहुत है। और कहते थे वैज्ञानिक युक्ति आज बहुत बात कहते हैं, अगर विज्ञान के द्वारा राग और क्रोध का नाश होता रूस वाले हो जाते, और भैया बहुत संख्या से नाश होता चीन वाले हो जाते, और महाराज बुद्धिमानी से नाश होता तो लंदन वाले हो जाते, और झूठे प्रोपेगंडा से राग और क्रोध का नाश होता तो पाकिस्तानी हो जाते, और आलस्य और अकर्मण्यता से राग नाश हुए क्रोध नाश होता तो हिंदुस्तानी हो जाते। निवेदन करना चाहता हूँ कि राग और क्रोध किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है कि हम अमुक परिस्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी तो हम राग और क्रोध रहित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरों के अधिकार देने से आप राग रहित होते हैं, अपना अधिकार छोड़ने से आप क्रोध रहित होते हैं। अब ये जो कार्यक्रम है आपके सामने राग और क्रोध से रहित होना, ये ईश्वरवादी के लिए, अध्यात्मवादी के लिए, भौतिकवादी के लिए, तीनों के लिए अनिवार्य, क्योंकि भौतिकवादी भी राग और क्रोध से रहित हुए बिना सही मानव हो ही नहीं सकता। और उसका कितना प्रत्यक्ष सबूत है कि जार के मासूम बच्चों को लेलिन ने मार दिया, बताइए उन पर क्रोध करने की कौन जरूरत थी, जो लेलिन सारे संसार के मानव जात को सुखी करना चाहता था वो जार के मासूम बच्चों को माफ नहीं कर सका, और माफ क्या उनको कोई कसूर ही नहीं था, अरे बच्चे को कोई कसूर होता है क्या? हमारी भारतीय परंपरा में बच्चा समाज का कहलाता है, नाम माँ बाप का होता है, नाम तो अमुक कर्म का, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी समाज पर होती है, शिक्षण की, पोषण की, रक्षण की। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि क्या आज आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि प्रातःकाल से हम सो के जगेंगे तो शांत होकर थोड़ी देर बैठेंगे तब उठेंगे ख्याल, जब ख्याल उठेंगे तो उनमें दो तरह के ख्याल होंगे, एक तो इस प्रकार का ख्याल होगा जिसको पूरा करना है, एक इस प्रकार का ख्याल होगा जिसको मिटाना है। तो जिन ख्यालों को मिटाना है उनका तो आप समर्थन न करें, उनको पसंद न करें, उनके पूरे करने की न सोचें, और जिन ख्यालों को पूरा करना है और उन जिनका के वर्तमान से संबंध है उसको पूरा कर दें। तो वो जब ख्याल पूरा करें तब इस बात को सोचें कि अगर मैंने शरीर के साथ कोई व्यवहार किया है तो शरीर के अधिकार की रक्षा की है या शरीर के द्वारा अपने सुख का संपादन किया है। मैंने अच्छी तरह अनुभव करके देखा है, मैं खाने का बड़ा शौकीन रहा हूँ, न करके अपनी खाने की रुचि पूर्ति की है, उसके बदले में शरीर को रोगी किया है और उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। अब देखिए यहाँ आता हूँ तो लोग उठा के लाते हैं मुर्दा की तरह, अरे मरने के बाद तो उठाते ही थे लोग, अब मुझको जिंदा उठाते। तो वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ के शरीर के अधिकार की रक्षा के लिए आप अपने आहार विहार में संयम करें, विहार में भी संयम करें, आहार में भी संयम करें, जिससे कि आपके शरीर का अधिकार रक्षा हो जाए। और शरीर पर के द्वारा, जिससे कि शरीर के द्वारा तीन काम करता है मनुष्य, अपने सुख के लिए भोग करता है, शक्ति संपादन में तप करता है और लोक हित के लिए सेवा करता है। आप बताइए चौथी बात आप शरीर द्वारा कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो, यानी तप, भोग और सेवा, ये नहीं कर सकते ना? तो भाई सेवा तो सात्विक मनुष्य ही करता है, ऊंचे दर्जे का मानव सेवा करता है, मध्यम श्रेणी का तप करता है शक्ति संपादन के लिए,
और जब शक्ति आ गई तो कभी कोई व्यनर्शन कर बैठता है।
हाँ,
और बहुत ही निम्न कोटि का जो मानव है वो भोग करता है। तो अब आप सोचिए, शरीर के द्वारा भोग करेंगे कि सब करेंगे कि सेवा करेंगे, ये आपको तय करना, मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं कोई उपदेशा बनकर तो बोलता नहीं हूँ। आप मानव है, मैं मानव हूँ, मानव ना होने के नाते अपना परामर्श आपके सामने रखता हूँ कि भाई अगर उच्च कोटि के मानव बनना चाहते हो तो शरीर के द्वारा सेवा करो। अगर आपसे सेवा नहीं बनती है किसी तरह से, तो बाबा किसी को हानि तो मत पहुंचाओ कम से कम, यही बड़ी सेवा है। मैं तो कहता हूं दुनिया में जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है वो भी सेवकों में उसका नाम हो जाता है, फिर प्रकृति उससे सेवा करा देती है, फिर प्रभु का मंगलमय विधान उसे सेवा भी करा लेता है आगे करके, और त्याग भी करा लेता है, सब भी करा लेता है, ऐसा विधान है। तो शरीर के द्वारा सेवा कर सको करो, न कर सको तो कुछ मत करो। अगर रह सको तो, न रह सको सेवा मनने लगे तो तब करो, भोग मत करो, क्योंकि भोग अगर आप करते रहेंगे तो मानव संज्ञा आपकी छिन जाएगी। मानव शरीर बना रहेगा, मानव आकृति बनी रहेगी, पर मानव जो संज्ञा है, मानव संज्ञा आप जानते हैं कितनी ऊंची संज्ञा है, मानव के जीवन का एक विज्ञान है, मानव के जीवन का एक दर्शन है, और मानव में एक बड़ी अलौकिक वस्तु आस्था है। क्योंकि तो आस्था का तत्व जीवन में न हो तो परमात्मा से संबंध ही नहीं हो सकते आप, और दर्शन का तत्व जीवन में न हो तो शांति और मुक्ति पा ही नहीं सकते, और विज्ञान का तत्व जीवन में न हो तो आप सही काम कर ही नहीं सकते। तो इस दृष्टि से आप मानव हैं, आप संसार के काम आ सकते हैं सही काम करके, आप अपने काम आ सकते हैं काम रहित होकर के, आप प्रभु के काम आ सकते हैं प्रेमी होकर। ये मनुष्य मात्र का जन्मजात अधिकार है। ये मत सोचिएगा हम बेपढ़े लिखे हैं तो हम संसार के काम नहीं आ सकते, कि हम अपने काम नहीं आ सकते, कि हम प्रभु काम नहीं आ सकते, कि हमारे पास बहुत सी संपत्ति नहीं है तो हम संसार के काम नहीं आ सकते, अपने काम नहीं आ सकते प्रभु, ये मत सोचिएगा। इसका संबंध आपसे है, आपकी परिस्थिति से नहीं है। आप सोचिए ना, जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है तो वो भी तो संसार के काम आता है, आप सच मानिए। हाँ, ये बात जरूर है, साधन सेवन नहीं लगा सकते, कितने आदमियों को खाना नहीं खिला सकते, हमको मोटर बैटरी नहीं दे सकते, हमें फर्स्ट क्लास कचरा हरा भी नहीं दे सकता, ये तो हो सकता है, लेकिन संसार के काम नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता। इसलिए सभी परिस्थितियों में सभी भाई रहित होकर संसार के काम आ सकते हैं, अचाह होकर अपने काम आ सकते हैं, प्रेमी होकर प्रभु के काम आ सकते हैं। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, और अपनी बात मालूम हो, जीवन का सत्य मालूम हो, तो थोड़ा इस पर अमल करके देख लीजिए। अरे भाई, एक दिन के लिए सोच लीजिए आज हम कोई बुराई नहीं करेंगे, देखिए आप संसार के काम आते हैं कि नहीं, उस दिन आप पर कोई क्रोध नहीं करेगा, आज मालूम कोई नाराज नहीं होगा, जिस दिन आप बुराई नहीं करेंगे कोई नाराज नहीं होगा। बुराई के अंत में आलस्य भी आता है, अगर जरूरी काम करने को रखा है नहीं तो लुढ़ाई रहते कि तुम गौरी कौन गए, आप अजमा लो। अगर आपने जरूरी काम नहीं किया तो आपकी पत्नी आपको डांट सकती है, आपका बेटा आपको डांट सकता है, और अगर बाप को डांटता ही उसके लिए कौन कहे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जरूरी काम अगर पूरा कर देंगे, जिसे कि आप कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो संसार आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा, और जिससे दूसरे लोग प्रसन्न हो जाते हैं उसे बिना मांगे प्रसन्नता मिल जाती है। ये भी जीवन का एक तथ्य है, आप अनुभव करके देखिए कि अगर आपसे दूसरों को प्रसन्नता होती है तो आपको भी प्रसन्नता हो ही जाएगी। अगर आपको दूसरों से क्षोभ होता है यार, तो अनुभव करके देख लो कितने योग्य तुम क्षोभित हो जाओगे। ये बात है, लाज के सामने किसी बाहर न कहो, भीतर बिल्कुल होगी। इसलिए तुम्हारे द्वारा किसी को क्षोभ न हो, तुम्हारे द्वारा किसी की क्षति न हो, अपितु तुम्हारे द्वारा सभी को प्रसन्नता मिलती रहे, तुम्हें भी प्रसन्नता मिल जाएगी। और अगर जो मिलता जाएगा और उससे ऊपर उठते जाओगे तो आपको वो जीवन मिल जाएगा कि प्रभु स्वयं तुमसे कहेंगे तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे काम के हो, तुम बड़े अच्छे हो। देखिए, भक्त की पहचान क्या है, भगवान जिसका एहसान मानने लग जाए। सच्चे शिष्य की पहचान क्या है, कि गुरु जिसका एहसान मानने लग जाए। सच्चे व्यक्ति की पहचान क्या है, कि समाज जिसका आभार मानने लग जाए। मुझे कहने के लिए नहीं, ईमानदारी से, यानी अगर आप अच्छे आदमी हैं तो संसार आपकी जरूरत अनुभव करेगा, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आप स्वयं स्वाधीन हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो वो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं अपनी ओर से क्या व्याख्या दूं, मैं पढ़ने का आदमी नहीं, तो मैं आपसे केवल ये निवेदन कर सकता हूँ कि आपको जो मानव संज्ञा प्राप्त हुई है, मानव पद जो प्राप्त हुआ है, ये बड़े गौरव की बात है। ये आपके तप का फल नहीं है, ये आपके दान और पुण्य का फल नहीं है। जो तप दान पुण्य सेवा ये तो मानव होने के बाद में करने का अधिकार होता है, और तो भोग योनि है, मानवी तो साधन योनि है। तो जिसने सृष्टि की रचना की उसी ने आपकी रचना की, और अपने ही में से आपकी रचना की, कहीं बाहर से आप सामने लेकर आपको नहीं बनाया, और इसलिए आपको मानव बनाया कि आप उदार हो सकें, आप स्वाधीन हो सकें, आप प्रेमी हो सकें। चाहे हमको जीवन भर भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, कठिनाई सहनी पड़े, बेमकान के रहें, अनेक अनेक कठिनाइयों का सामना रहे, कि हो सकता है, लेकिन मानव उदार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, स्वाधीन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात और सोचिए कि जब जीवन में उदारता आ जाती है तो उसको संसार अपना मान लेता है, और जब स्वाधीनता आ जाती है तो किसी से कोई आशा रखता ही नहीं, और जब प्रेमी हो जाता है तो देखिए प्रेमियों की हम क्या बताएं आपको। प्रेमियों ने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे प्रेम का पता हमारे प्रभु को हो जाए, क्यों? ये तो प्रेम में कलंक है। जो आज अगर हमें उनके वियोग में वेदना हो रही है और हम कह भाई भगवान को हमारे वियोग में वेदना हो तो प्रेम का पत्थर, वो चाहे जहां हो, चाहे जैसे हो, चाहे कुछ करें, पर हमारा कोई और नहीं, हम किसी और के नहीं, उनकी प्रियता ही हमारा जीवन है, उनकी स्मृति हमारा जीवन है, उनकी आस्था महत्ता और आत्मीयता ही हमारा जीवन है। ये प्रभु विश्वासी की बात है, और त्रिकाल में भी मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, कि संसार में मेरा करके कुछ है ही नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, कि अध्यात्मवादी का जीवन है, और हृदय सदैव उदारता से भरा रहे, ये भौतिकवादी का जीवन है। आप ये मत सोचिएगा कि भौतिकवाद बुरी चीज है, भौतिकवाद भी जीवन का एक भाग है। ऐसी जैसे लोग समझते हैं आजकल भौतिकवाद की जरा बातें सुनी और वैज्ञानिक चमत्कार सुने और कहे अध्यात्मवाद को भूल गए, वो भी नहीं, अध्यात्मवाद भी जीवन का एक भाग है, ऐसे ही आस्तिकवाद भी जीवन का एक भाग है। तो ये आप ही के जीवन के तीन पहलू हैं, भौतिकवादी होकर आप जगत के काम आते हैं, अध्यात्मवादी होकर आप अपने में अपने को संतुष्ट पाते हैं, और आस्तिकवादी होकर आप प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं। तो प्रेम से भरपूर होने की बात, अपने को अपने में संतुष्ट करने की बात, और जगत के काम आने की बात, ये आपकी बात है, ये आपका जीवन है, ये मनुष्य मात्र का जीवन है, ये इस पर निर्भर नहीं है कि आपका शरीर काला है, गोरा है, कुरूप है, सुंदर है, आपके पास संपत्ति कम है कि अधिक है, आपके पास योग्यता कम है अधिक, इस बात पर नहीं, आपकी इस भावना पर कि मेरे द्वारा किसी के साथ बुराई न हो, मैं बुराई नहीं करूंगा, ये मान लेंगे तो आप भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी विश्व प्रेम से भरपूर हो जाएंगे, विश्व प्रेम की आपको प्राप्ति होगी, और अध्यात्मवाद की दृष्टि से आपको आत्मरति की प्राप्ति होगी, और आस्तिकवादी की दृष्टि से आपको प्रभु प्रेम की प्राप्ति होगी। इससे क्या सिद्ध हुआ? भौतिकवादी हो, चाहे अध्यात्मवादी हो, चाहे ईश्वरवादी हो, सबको अंत में प्रेम की प्राप्ति होगी, और प्रेम एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि जिससे कभी किसी को अरुचि होती है क्या, जिससे कभी किसी की पूर्ति होती है क्या? गौर तो कीजिए, कोई आपको प्यार करे तो आप थक जाते हैं क्या? मत कीजिए, ऐसा तो कभी नहीं। आपको खाना खिलाया तो हाथ जोड़ते हम नहीं खा सकते है? आपको कोई धन दे तब भी आप कहते भाई हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे लेकर, लेकिन कोई आपको प्यार दे और आप कहते हमको नहीं चाहिए, है किसी में हिम्मत नहीं है ना? तो सबसे बढ़िया चीज क्या है? प्यार। तो प्यार पाने में हम भले ही पराधीन हो पर देने में पराधीन है क्या? और आप जानते हैं प्यार देने वाले को प्यार भी मिलता है और जान न जाने क्या क्या मिलता है। इसलिए प्यार ऐसी प्यारी चीज है कि संसार को दे दो तो भौतिकवादी हो गए, अपने आत्मा में अपनी प्रियता कर लो तो अध्यात्मवादी हो गए, और अपने प्रियतम का नाम परमात्मा रख लो तो आस्तिकवादी हो गए। तो हम सबको मिलने वाला है प्रेम, और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। हम सब स्वाधीन होने वाले हैं, हम सब उदार होने वाले हैं, हम सब बुराई रहित हो सकते हैं, ये जीवन का सत्य है। और जीवन के सत्य को आपकी आस्था हो सके, आप विश्वास कर सकें, आप अनुभव कर सकें, तो करके देख लीजिए। अब अधिक बोलने से मैं भी थकूंगा और तुम्हारा भी समय बर्बाद होगा, इसलिए कि जितनी बात इस पर प्रेरणा हुई वो मैंने आपसे निवेदन कर दी। अब जो कुछ आपने कहा है और समय बाकी है, आप उनको बुलाना ही चाहते हैं, तो जो कुछ मैंने कहा उस पर प्रश्न कर लो। अब नए प्रश्न मत करना, नहीं ये सुना हुआ तुम्हारा
सत्संग समाप्त हो। जो सत्संग को जो शुरू थे तो
आपके लायक आपके पास मौजूद हम करते बस तो महान भाव क्या कहा जाए क्या न कहा जाए इस संबंध में हम सब अपने आप अपने लिए सोचें कि जो हम सुनते हैं क्या वो हमारे अपने जीवन का सत्य नहीं है। अगर है तो हम जो अपने संबंध में जो अपनी ओर से विकल्प करते रहते हैं वो विकल्प न करें। गुरु के द्वारा, वेद के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो सुना जाता है उसमें उससे हमारा अपना विकल्प दूर होता है। कोई नई बात नहीं आती, क्योंकि जो अपने में है वही सभी में है, जो सभी में है वही अपने में है। इसलिए यदि हम अपने ज्ञान में विकल्प न करें तो ज्ञान का प्रभाव स्वतः हो जाता है। श्रद्धा में विकल्प न करें तो श्रद्धा का प्रभाव हो जाता है। आप जानते हैं आमतौर से तीन ही बातें रहती हैं, स्तुति, उपासना, प्रार्थना। तो स्तुति क्या है? अपने ही द्वारा अपने लिए प्रभु की महिमा को स्वीकार कर लेना, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपने लिए अपने द्वारा प्रभु की महिमा स्वीकार कर ली, ये स्तुति हो गई। संबंध जोड़ लिया तो ये उपासना हो गई, और योग की, ज्ञान की, प्रेम की, आवश्यकता अनुभव की तो ये प्रार्थना हो गई। तो स्तुति, उपासना और प्रार्थना से मानव का जीवन सफल होता है। और आप अगर देखेंगे अपने जीवन में यही तीन बातें करते भी रहते हैं, ऐसा कौन कह सकता है कि हमने अपनी ओर से किसी संबंध स्वीकार नहीं किया? या तो संबंध स्वीकार करने से उपासना हो जाती है, और महिमा स्वीकार करने से श्रद्धा स्तुति हो जाती है, और वास्तविक आवश्यकता अनुभव करने से प्रार्थना हो जाती है। आप स्वयं सोचे कि आपने किसके साथ संबंध स्वीकार किया है, किसके साथ संबंध है ये बात अलग है, और हमने किसके साथ स्वीकार किया ये बात अलग है। तो हमने किससे संबंध स्वीकार किया है इस पर स्वयं सोचे। संबंध की स्वीकृति अपने ही द्वारा होती है, किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। ऐसे ही किसी की महिमा की स्वीकृति भी अपने द्वारा होती है, और किसी आवश्यकता की अनुभूति भी अपने द्वारा होती है। तो स्तुति, उपासना और प्रार्थना हम सब कर सकते हैं। और उसको परमात्मा के साथ मिला दिया तो ठीक ठीक हो गई, ईश्वर से मिला दिया तो गलत हो गई। उपासना किसी हमने किया क्या है? आप सोचिए, किसी ने किसी संबंध जोड़ा है, अब शरीर से संबंध जोड़ लिया तो मोह में आबद्ध हो गए। हम ही ने जोड़ा है, धन से संबंध जोड़ लिया, लोभ में आबद्ध हो गए। परिस्थिति से संबंध जोड़ लिया, विषमता में आबद्ध हो गए। किसी अवस्था से संबंध जोड़ लिया, प्रसन्नता में आबद्ध हो गए। तो हमारे संबंध जोड़ने का बड़ा प्रभाव होता है, और हम ही पर होता है और स्वतः होता है। अब आप सोचिए कि अगर आप परमात्मा संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उसका भी प्रभाव हो जाएगा। परमात्मा संबंध जोड़ने का प्रभाव क्या होगा? परमात्मा की समीपता, परमात्मा से एकता, परमात्मा से अभिन्नता होगी। और संसार का संबंध जोड़ने का क्या हुआ, विचार कीजिए, भोग हुआ, मोह हुआ, आसक्ति हुई और कुछ मिला नहीं। अब आप स्वयं सोचिए कि भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति आपको अभिष्ट है, पसंद है, कैसे होगी? ये बात मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा, वो तो आप ही जानते हैं। पर आपको पसंद है कि भोग मोह और आसक्ति नाश हो जाए? अगर आपको ये बात पसंद है तो संसार का संबंध अपनी और अपने लिए तोड़ दीजिए, अपने लिए संसार का संबंध तोड़ दीजिए, भोग भी नाश हो जाएगा, मोह भी नाश हो जाएगा, आसक्ति भी नाश हो जाएगी। और इसलिए एक बात हुई, अथवा परमात्मा संबंध जोड़ लीजिए, योग भी हो जाएगा, बोध भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा। तो संबंध जोड़ने और तोड़ने की बात अगर आप अपने संबंध में अपने द्वारा अनुभव कर लें, अभी कर लें, और उसमें कहीं विकल्प मालूम हो तो चाहे सत्पुरुषों से चाहे सद्ग्रंथों से उसको उसका प्रमाण दे दें। देखिए ग्रंथ, गुरु और ग्रंथ के द्वारा आपके ज्ञान का विकल्प दूर हो जाता है, विश्वास का विकल्प दूर हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपने किसके साथ संबंध जुड़ा है, अर्थात आप किसकी उपासना करते हैं, इस पर विचार कर लीजिए। एक बार कानपुर में बड़े संपन्न संत प्रेमी तो चित्र था लक्ष्मी नारायण का, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको लक्ष्मी के बिना नारायण अच्छे नहीं लगते, साफ कह दिया। तो बात ठीक है, तो संबंध जोड़ा लक्ष्मी से, नारायण से जोड़ा नहीं, और लक्ष्मी नारायण छोड़कर कहीं जाती नहीं, अब होगा क्या पता आप उसकी। तो आप किसको अपना मानते हैं, किसके साथ संबंध जोड़ते हैं, ये संबंध में जोड़ने में विश्वास हेतु होता है और तोड़ने में ज्ञान हेतु होता है। आप में आस्था का तत्व भी है, आप में ज्ञान का तत्व भी है। इन दोनों तत्वों के द्वारा आपको किससे संबंध जोड़ना है, किससे संबंध तोड़ना है, इस पर पहले स्वयं अपने आप निर्णय कीजिए। अगर आपको प्रभु से संबंध जोड़ना है तो वही आस्था का तत्व आपको उपासक बना देगा। अगर संसार संबंध जोड़ना है तो वही आस्था का तत्व आपको भोगी बना देगा। तो भोगी होने में, योगी होने में आप स्वाधीन हैं, चाहे भोगी हो जाइए चाहे योगी हो जाइए। जो यह करके जिसे अनुभव करते हैं उससे संबंध जोड़ लेंगे तो भोग वो आसक्ति हो जाएगी, और है करके जिसको स्वीकार करते हैं उससे संबंध जोड़ लेंगे तो योग बोध प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जीवन की पूर्णता इन तीनों की एकता में होती है। अगर आपने योग प्राप्त नहीं किया तो शांति नहीं मिलेगी, बोध प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और प्रेम प्राप्त नहीं किया तो भक्ति नहीं मिलेगी। तो योग बोध और प्रेम ये जीवन की मांग है, ये मनुष्य मात्र की अपनी मांग है। और मांग उसे कहते हैं कि जिसकी पूर्ति हो जाए, और मांग ही मांग की पूर्ति में हेतु है। बड़ी विचित्र बात है, भोग मोह आसक्ति की ओर गतिशील होने में केवल कामना ही काम नहीं करती, कामना के साथ साथ कुछ और प्रयास करना पड़ता है, कुछ और कार्य करना पड़ता है, फिर भी पूर्ति होती है, नहीं भी होती है, और होने पर भी पुनः उत्पत्ति होती है। ईश्वर का कानून है, और ईश्वर का कानून यह है कि अगर आप योग की आवश्यकता वर्णन करते हैं, भाई मुझे तो योग चाहिए, मुझे तो योग चाहिए, तो ये आवश्यकता अनुभव करना ही भोग की रुचि के मिटाने में समर्थ हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है, जैसे अग्नि काष्ठ को भस्मीभूत करके स्वयं बुझ जाती है, उसी प्रकार योग की मांग भोग की रुचि को मिटाकर अपने आप पूरी हो जाती है। अब आप सोचिए कठिनाई क्या हुई आपके जीवन में, केवल यही हुई ना साहब हमको योग की आवश्यकता अनुभव करना चाहिए। अब ये आवश्यकता कब अनुभव होती है, जब आप इस बात में विश्वास कर लें कि मुझे योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, अब ये विश्वास जो होता है ना, ये बिना सुने तो होता नहीं, सुनकर ही होता है। जान करके जो चीज होती है उसका नाम विश्वास नहीं होता। सुन करके, सुना है आपने कि भाई योग की प्राप्ति मुझे हो सकती है, और अनुभव में क्या है आपके, कि योग की मांग आप में है। क्योंकि योग का परिणाम क्या है, बोध और प्रेम। यहाँ योग है, वहीं बोध और प्रेम है। तो जब योग बोध का और प्रेम का फल क्या होता है, बोले भक्ति और मुक्ति, और योग का फल बोले शक्ति, असमर्थता, पराधीनता, निरस्ता, किसी को पसंद आती नहीं। आप सोचिए स्वयं, आपसे भी मुझे भाई असमर्थ होना चाहते, बोले नहीं। पराधीन बोले नहीं। जीवन में निरस्ता पसंद करते, बोले नहीं। ये तो आपकी अपनी मांग भी तो है। आप विचार करके देखिए, जब आपको निरस्ता पसंद नहीं है, जब आपको पराधीनता पसंद नहीं है, जब आपको असमर्थता पसंद नहीं है, तो फिर इसकी उपलब्धि भोग से तो होती नहीं, योग से होती है। तो योग से स्वाधीनता की और भक्ति की, प्रेम कहो भक्ति कहो, उसकी प्राप्ति होती है। तो अब आप पसंद है आपको योग बोध प्रेम, और उपाय है उसकी आवश्यकता अनुभव करना। ये एक ही बात पर आप जोर डाल देते अपनी तरफ से अपने लिए, भाई मुझे तो योग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, योग चाहिए। अब योग के लिए हम क्या करें, ये बात सबके सामने आए तो सोचे भाई भोग न करें। भोग करने की तुमको आदत है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, तो बोलने का सुख, सुनने का सुख, इसमें परिश्रम हेतु है, पराश्रय हेतु है। तो जिस प्रवृत्ति में परिश्रम और पराश्रय हेतु होता है उसको भोग कहते हैं। भोग बिना पराश्रय के, बिना परिश्रम के नहीं प्राप्त होता या नहीं भास होता। लेकिन अब जब मुझे योग चाहिए तो पहला प्रश्न होगा कि भाई जब योग चाहिए तो पराश्रय की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों? योग उसके साथ होता है जो अपना हो, अपने में हो और अभी हो, समर्थ हो और अद्वितीय हो। जो अपना नहीं है, जो अपने में नहीं है, जो अभी नहीं है, उसके साथ तो योग हो ही नहीं सकता। योग उसी के साथ होगा जो अपना हो, अपने में हो, अभी हो। तो आप कहेंगे साहब अपने में क्या है, तो क्या है जिससे पूछते हो, स्वयं अपने में संतुष्ट होकर देख लो क्या है। कोई कहेगा साहब पर में क्या है, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने में क्या है, दूसरे कैसे पूछेंगे। हमसे भूल क्या होती है कि जो हम अपने में है वो भी दूसरे से पूछते हैं। नतीजा ये होता है कि दूसरा संकेत करे, बताए, लेकिन क्यों हम अपने में अपने आप नहीं अनुभव करते, इसलिए हमको उसका ठीक प्राप्ति नहीं होती। तो अपने में परमात्मा है, अपना परमात्मा है, अभी परमात्मा है, ऐसा गुरु वाक्य के द्वारा, ग्रंथ वाक्य के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा हमने सुना। कि हमने सुना खाली, जब हमने सुना तो सुने हुए में होनी चाहिए आस्था, श्रद्धा, विश्वास। मैं ऐसा मानता हूं कि सुने हुए का अस्तित्व अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर देखे हुए के अस्तित्व पर दृष्टि जाएगी क्या आपकी, यह विचार कीजिए। और जब तक आपने देखे हुए के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तब तक सुने हुए का अस्तित्व टिकेगा क्या, क्या राय आपकी, सोच लीजिए। यानी आपने जब तक देखे हुए के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तब तक सुने हुए का अस्तित्व टिकेगा ही नहीं। कितनी युक्ति लगाइए, कितनी दलील लगाइए। तो अब आप सोचिए कि आप देखे हुए के अस्तित्व को अस्वीकार करने को राजी है क्या, अथवा सुने हुए के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी है क्या। ये दोनों आपकी अधीन बात है। आप सुने हुए के अस्तित्व को स्वीकार भी कर सकते हैं और देखे हुए